नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कहा है कि दोनों देश परस्पर विकास के भागीदार हैं, न कि एक दूसरे के विरोधी, और उनके मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। श्री मोदी और श्री जिनफिंग ने चीन के तियानचिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक के दौरान मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच सहयोग से पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा।
सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। हमारे सहयोग से दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए। इससे
दोनों नेताओं ने सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान पर सहमति व्यक्त की, ताकि समग्र द्विपक्षीय संबंध और दोनों देशों के दीर्घकालिक हित बने रहें। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने म्यांमार के सुरक्षा और शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन ऑंग लाइंग के साथ भी मुलाकात की। बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि भारत अपनी पड़ोस प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि म्यांमार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से संपन्न होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों और मिस्र और नेपाल के प्रधानमंत्रियों सहित विश्व नेताओं से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने इन नेताओं से मिलकर खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज उन्होंने कहा कि देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश को कसौटी पर कस रखी हैं। पिछले कुछ हफ्तों में देश ने बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा कहर देखा है। श्री मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में स्थानीय लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और प्रशासन ने हर संभव प्रयास किए हैं।
जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस, ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है।
लखनऊ में आज एक विस्फोट में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। जिलाधिकारी विशाख जी ने बताया कि विस्फोट पटाखों की एक अवैध फैक्ट्री में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिथिला को ज्ञान और साधना की ऐसी भूमि बताया है जिसने अपनी आध्यात्मिक चमक से दुनिया को प्रकाशित किया है। आज नई दिल्ली में भारत के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में दरभंगा राज के योगदान पर एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गौतम ऋषि द्वारा रचित न्याय दर्शन भी इसी पवित्र भूमि से उत्पन्न हुआ था। बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में आज भारत ने जापान को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत ने तीसरे मिनट में ही मनदीप सिंह के गोल से बढ़त बना ली। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह का शानदार प्रदर्शन इस मैच में भी जारी रहा और उन्होंने 2 गोल किए। प्रतियोगिता में भारतीय कप्तान ने अब तक 5 गोल किए हैं। भारतीय खिलाड़ी अभिषेक को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। पूले के अपने अंतिम मैच में कल भारत का मुकाबला कजाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।